प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिवात्मना तुष्टस्तद्वज्ञस्तदोच्यते। इसमें दो बातें बताई, प्रजा सर्वथा अच्छी तरह से परित्याग कर तब उस स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसी प्रज्ञा बुद्धि। जब तक मनोगत कामनाओं का त्याग नहीं करता और अपने स्वरूप में सदा के लिए संत नहीं हो रहा, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। ये स्थिर बुद्धि की बात आरंभ में आई है, व्यवसायी आत्मी का बुद्धि एका, इससे पहले आया है कि ऐसा ते बेटा सांख्य बुद्धियोगे त्रिमांसो। अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है पहले ही पहले। वो योग के विषय में बुद्धि सुनो, इसका तात्पर्य हुआ, अब मैं कर्मयोग की बात कहता हूँ तो वह व्यवसायत्मिक बुद्धि एक निश्चय वाली बुद्धि क्या है, केवल परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है। दुनिया की चीज कोई मिले चाहे न मिले, इसकी परवाह न कर केवल परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है, केवल संसार की सेवा करने के लिए ही हमें जाना है, ऐसा निश्चय कर लेना, ये व्यवसायत्मिक बुद्धि। तो ये कब नहीं होती है तो कहा कि भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम, संसार के पदार्थों के संग्रह करने की इच्छा और उनके द्वारा सुख लेने की इच्छा, ये दो चीज जब तक रहती है तब तक ये व्यवसायत्मक बुद्धि होती नहीं। और इन दो चीजों का आग्रह मिट जाता है, संग्रह का लोभ मिट जाता है और भोग करने की सुखाशक्ति मिट जाती है, तब इसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो ये संग्रह की और भोग की आसक्ति कम होती है, वैसे ही बुद्धि स्थिर होती चली जाती है। अगर ये चलकर बुद्धि स्थिर होकर ये सर्वथा मिट जाते हैं, तो लक्ष्य पहले से ही संग्रह और सुख का मिट ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होगी। उस बुद्धि के अंत में कसौटी क्या है तो ये पिछले में श्लोक में बताया कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं का सर्वथा परित्याग कर देता है। तो प्रजाति का प्रकर्षण जाति साफ साफ त्याग कर देता, कहने का मनोगतान त्याग कामान, तो मनोगत संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने की बात आ जाती, फिर भी भगवान सर्वान शब्द देते हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यदा जिस काल में, जिस काल का देने का तात्पर्य उद्देश्य तो पहले एक हो गया, बुद्धि की स्थिरता कर दी कि परमात्म तत्व की तरफ ही चलना है, संसार की परवाह नहीं करना है, वहाँ भी हो गया, पर उस उद्देश्य के अनुसार संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाए, मन में किंचित मात्र भी कोई संसार की वासना नहीं रही, तब क्या होता है कि आत्मनि एव आत्मना तुष्टे, अपने से ही अपने आप में संतुष्ट रहता है। फिर उसके लिए अपने संतोष के लिए किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी घटना और किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तब वो स्थित प्रज्ञ हो गया, अब उसकी बुद्धि सर्वथा स्थिर हो गई। पहले उद्देश्य बुद्धि के स्थिर करने का रहा, बुद्धि में एक व्यवसायत्मिक का निश्चय एक रहा, परंतु बुद्धि स्थिर नहीं हुई, सर्वथा कामनाओं के त्याग करने से बुद्धि स्थिर होती है। अब इसमें एक मार्मिक बात बताई जाती है, उस पर भाई ध्यान दें, बहनों माताएं भी विशेषता से ध्यान दें। मैं हूँ ये जो सबका अनुभव है कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, इस अनुभव में शरीरों को लेकर और खुद स्वयं जो परमात्मा का अंश है इनको लेकर मैं हूँ, ऐसा भाव होता है, मानो परमात्मा का अंश भी है और प्रकृति का अंश है, दोनों को लेकर मैं हूँ ये बात रहती है। तो मैं हूँ इसका बड़ा भारी प्रभाव है, ये जब संसार की तरफ रहता है कि मैं संसारी हूँ, लोभी हूँ, भोगी हूँ, मोही हूँ, ये भाव रहता है, तब तक ये संसार में लिप्त रहता है, फंसा रहता है, दुखी रहता है। और मैं परमात्मा का हूँ ऐसा दृढ़ भाव हो जाता है और ये लोभी मोही आदि के भाव की विमुखता हो जाती है, ये मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, ऐसा होने से ये हूँ परमात्मा की तरफ लग जाता है, तो परमात्मा की तरफ लग जाता है तो संसार छूट जाता है, परंतु संसार की तरफ लगता है तब तक परमात्मा छूटते नहीं, क्योंकि परमात्मा का ये अंश है उससे वियोग तो हो नहीं सकता, और परमात्मा की तरफ लगने से संसार का वियोग स्वतः हो जाता है। क्यों हो जाता है कि संसार का संयोग रहता ही नहीं। पहले मैं बालक हूँ कहते थे, फिर क्या मैं जवान हूँ, फिर कहने लगे मैं बुढ़ा हूँ। तो ये हूँ तो एक रही और बालक जवान बुढ़ा ये बदलता रहा, तो ये छूटता रहता है। लोभी मोही क्रोधी कामी आदि ये भाव भी छूटते रहते हैं, इनको तो ये जबरदस्ती पकड़ता रहता है, और इनसे विमुख होकर भगवान का हूँ तो भगवान का हूँ ये छूटेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा का ये है, चाहे ये जाने चाहे ये माने और चाहे न जाने न माने, स्वीकार करे न स्वीकार करे, हल हालत में ममी वांश हो जीव लोग परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का तो है ही, और संसार का कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, तो संसार की तरफ रहेगा तब तक परमात्मा तरफ तो छूटेगा नहीं, संसार पकड़ा जाएगा नहीं, दुख पाता रहेगा, और संसार से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख हो जाएगा, तो सन्मुख हो जीव मुई जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही मेरे को तो केवल भगवान की प्राप्ति करना है, संसार की तो सेवा करना है, इससे हमें लेना कुछ नहीं है, क्योंकि संसार की वस्तु हमारे पास है, वो संसार को दे करके उर्ण हो जाना है, नहीं तो ये ऋण रहेगा, तो संसार से लेना नहीं सेवा करना, इसके लिए संसार से संबंध है, लेने के लिए बिल्कुल नहीं, और परमात्मा से भी लेना नहीं, अपने आप को परमात्मा में देना है, जैसे संसार की वस्तु संसार को देना है, ऐसे स्वयं परमात्मा को परमात्मा को अपने आप को देना है, लेना वहां से भी नहीं है। ऐसा जब विचार हो जाता है तो ये जड़ता से विमुखता चिन्मय परमात्मा के सन्मुखता हो जाती है, उस सन्मुखता होने पर जन्म कोटि अग्नाशय तभी अनंत जन्मों के करोड़ों जन्म नष्ट हो जाए, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं कि पापों का कारण तो जड़ता के साथ संबंध था। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता वो पाप क्यों कर लेता है, तो उत्तर दिया काम ऐसा, ये जो कामना है ना संसार का सुख मिले, भोग मिले, संग्रह मिल जाए, मेरे पास रहे, ये पापों की जड़ है, इससे विमुख हो गया तो पापों की जड़ ही कट गई, बेचारे अनंत जन्मों के पाप कहाँ टिके, तो जन्म कोटि अग्नाशय तब ही उसी क्षण ही उनके साथ संबंध विच्छेद हो गया, उनके कारण के साथ संबंध विच्छेद हो गया तो कारणाभाव कार्याभाव शुद्ध हो जाएगा। तो परमात्मा की प्राप्ति का जो व्यवसायत्मक बुद्धि पक्का निश्चय है, ऐसा निश्चय करते ही भगवान के सन्मुख और संसार से विमुख हो जाए, और सन्मुख हो जाए पाप नष्ट हो जाते हैं, तो पुराने पाप तो नष्ट हो गए, अब जो भीतर में कामना रही वासना रही उद्देश्य तो नहीं रहा परंतु सर्वथा मिटी नहीं, तो वो सेवा करने से मिट जाएगी। हरे को सुख कैसे मिले, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये जोरदार लगन लग जाएगी, तो मेरे को इनसे कुछ नहीं लेना है, सेवा ही सेवा करना है, तो अपने जो लेने का भाव था उसका प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा, तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान ये स्थिति हो जाएगी। ऐसी अवस्था में मनुष्य के ऐसा दिखता है कि मेरे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, संकल्प विकल्प है, मेरा मन शुद्ध नहीं हुआ, ऐसा जो दिखता है, यहाँ एक मार्मिक बात और समझ, ये सब के सब मनोगत कहा भगवान ने, मन में आए हुए है, अभी इस अवस्था में भी मैं क्रोधी हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ, ऐसा मानते उसमें जो हूँ अंश है उसमें अभी काम क्रोध लोभ नहीं है, अभी भी अंतकरण में भी अंतकरण में ही है, परंतु अंतकरण के साथ एकता मानने के कारण से भी अपने में दिखते हैं, और जब सेवा ही केवल करना है, हमें संसार का सुख नहीं लेना है, तब उस हूँ में से ये भावना निकलेगी, नहीं तो हूँ में भावना रहेगी, तो सेवा ही करने के लिए तो मैं क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, कामी हूँ, मोही हूँ, ऐसा भाव बिल्कुल न माने, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान की तरफ चलना है मेरे को, संसार की तरफ चलना नहीं, तो मैं काम क्रोधी लोभी मोही नहीं हूँ। क्योंकि मैं आते हैं अंतकरण में, तो आते हैं ये चले जाए, ये आते जाते रहते हैं। मैं जो हूँ उस सत्ता तो निरंतर रहती है, और ये मन में आते जाते हैं, तो मन के भी धर्म नहीं है, मन में भी आते हैं। इस बात से भगवान ने मनोगतान कहा, मन में आए हुए है, न कि मन का स्वरूप है। तो इनका सबका ठीक तरह से परित्याग कर देता अच्छी तरह से, तो मनोगतान का त्याग कर देना है। पहले ही साधक को चाहिए कि ये मेरे में नहीं है। किसी भक्त पर आते हैं ऐसी हालत में विशेष सावधानी से ये बात देखनी है कि मन में आते जाते रहते हैं, मन में भी नहीं है और मेरे में भी बिल्कुल नहीं है। मैं दोषी हूँ, मेरे में दोष है, ये दो भाव इनको छोड़ नहीं पड़ेंगे, छोड़ने तत्काल। दोष है इस सत्ता को, दोषों की सत्ता को है नहीं, आते जाते हैं, और मेरे में है ऐसा मानो इन दोषों की सत्ता मानना और अपना संबंध मानना, ये गलती है। अब साधकों के लिए यहाँ इस बात की आवश्यकता है कि दोष मेरे में नहीं है, और दोष है ये बात भी नहीं, क्यों पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली चीज होती है, रहने वाली नहीं। बड़ी गलती ये करता है कि जब अपने में दोष है तब तो अपने में दोष है मानता ही है, और समय में भी जिस समय दोष नहीं है उस समय में काम क्रोध दोष को अपने में मानता है, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मोही हूँ, नहीं होता उस समय मानता है। तो फिर दोषों का संबंध आपने निरंतर मान लिया, जिन दोषों में निरंतर रहने की ताकत नहीं, उत्पन्न और नष्ट होते हैं सदा, उनको आपने मेरे में मान लिया और आप स्वयं निरंतर रहने वाले हैं, इस वास्ते उसको निरंतर अपने में मान लेते हो तो छूटेंगे नहीं। तो अपने में नहीं है, आगंतुक दोष है, आगंतुक भी अंतकरण में आते हैं, तो अपने में नहीं मानना है। कहते दिखते हैं कि दिखते रहे, परंतु ये छूटने वाले हैं, और ये प्रत्यक्ष दोष दिखते हैं ऐसे, ये आते जाते भी तो दिखते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते हुए भी दिखते हैं। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले की बात को तो पक्की माने, और मेरे में है ये बिल्कुल उड़ा दे। मेरे में दिखते हैं, कहते मैं निर्दोष हो रहा हूँ, मेरे में दोष, मेरे में से दोष जा रहे हैं, ये नष्ट हो रहे हैं, ऐसा माने, और भगवान का भजन चिंतन स्मरण करे और उसे शरण हो जाए, और हे नाथ पुकारे, कभी परवशता आ जाए, तो ऐसे साधन किया जाएगा तो बहुत जल्दी इसकी उन्नति हो जाएगी। और अपने में दोष मानता रहेगा तो जल्दी वास्तविकता नहीं होगी, वास्तविकता का अनुभव नहीं होगा, वास्तविकता रहते हुए अनुभव नहीं होगा। इस वास्ते भगवान कहते हैं कब होगा, तो यदा और तदा पद दिए, आज अब कर लो तो आज हो जाएगा, महीनों के बाद करो तो महीनों के बाद हो जाएगा, वर्षों के बाद करो तो वर्षों के बाद हो जाएगा, जन्मांतरों के बाद करो तो जन्मांतर में हो जाएगा। यदा और तदा दिया प्रजाति, यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। यदा और तदा, आज कर लो आज ही, अब भी कर लो अब, नारायण नारायण ना। क्योंकि वास्तविकता है, कोई शंका हो तो होगा, पहले होगा, पहले साधन अवस्था में अनुकूलता प्रतिकूलता में विक्षेप होगा, पर मैं अनुकूलता प्रतिकूलता का भोगी नहीं हूँ, मैं तो इनसे ऊंचा उठ रहा हूँ, अनुकूलता प्रतिकूलताओं को देखने वाला हूँ। देखने वाला होता है वो दृश्य से अलग होता है, अनुकूलता आती जाती मैं रहता हूँ, इस वास्ते मैं सुखी दुख और आगे बढ़े फिर मिल जाएंगे अपने माने तब अपने ही रही। अब अनुकूलता का न प्रतिशील प्रेम प्राप्त प्राप्त प्रेम, अनुकूलता लेकर सुखी न हो, प्रतिकूलता दुखी न हो, क्योंकि मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ, ये आने जाने वाले, इनसे मैं सुखी दुख क्यों हूँ। कभी बताया था कि हम बैठे हैं गंगा किनारे, सिलीपट हमारे पास में आकर चले गए, हम राजी हो गए, और हमारे पास नहीं यार उधर बह गए तो हम भी हो गए, तो फर्क क्या पड़ा, तेरे पास में होकर निकल गए तो क्या, और दूर होकर निकल गए तो क्या, तेरे साथ तो पहले है न को अब है। ऐसे अनुकूलता आई पास में होकर निकल गई, और प्रतिकूलता आई तो पास में होकर निकल गई, अब उधर होकर अनुकूलता निकली, अरे अनुकूलता नहीं आई, बात उसकी नहीं ठहरेगी, तेरे भी नहीं ठहरेगी, ना अनुकूलता ठहरेगी ना प्रतिकूलता ठहरेगी, ये तो जाने वाली। मैं बैठा बैठे क्यों दुखी हूँ, ये तो बहती है बड़ी सुगमता से। राम राम राम।